ओम शांति। अभी आपके सामने आदरणीय निर्वैर भाई जी योग की गहन अनुभूति कराएंगे। आदरणीय निर्वैर भाई जी,
ओम शांति। सबसे पहले आप सभी बाबा के नैनों के नूरे रत्नों को विशेष स्मृति दिवस पर मधुबन पधारने की बधाई हो। जनवरी मास शुरू होता है और सारे ही ईश्वरी परिवार कहो, ब्राह्मण परिवार कहो, बीके डिवाइन फैमिली कहो, सबके दिल में खास 18 जनवरी से संबंधित स्मृतियां आती हैं और इससे संबंधित विशेष हमारी जो पत्रिकाएं छपती हैं, प्यूरिटी है, वर्ल्ड रिन्यूअल है, ज्ञान अमृत है, उनमें भी विशेष अंक के रूप में स्मृति दिवस से संबंधित विशेष लेख छपते हैं, क्योंकि अपने इस ईश्वरी विश्वविद्यालय में अन्य संस्थाओं की तरह अपने गुरु का जन्मदिन नहीं मनाते हैं। अगर मनाते हैं तो त्रिमूर्ति शिव जयंती, शिव बाबा का अवतरण दिवस, उसको मनाते हैं और विशेष रूप से 18 जनवरी जब इस ईश्वरी विश्वविद्यालय के स्थापना के निमित्त फाउंडिंग फादर ब्रह्मा बाबा वो अपने पुरुषार्थ की फाइनल स्थिति कहो, अपनी कर्मातीत स्थिति कहो, संपूर्ण स्थिति कहो, संपन्न स्थिति कहो, बाबा ने इसको समर्थि दिवस के रूप में भी, अव्यक्ति दिवस के रूप में भी नाम दिया है। तो जब ब्रह्मा बाबा अपने निश्चित लक्ष्य को प्राप्त हुए, साकार में होते, ईश्वरी ज्ञान और योग के अभ्यास के फलस्वरूप उन्होंने जब अपना लक्ष्य प्राप्त किया और व्यक्त देह को त्याग कर अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप में सूक्ष्म वतनवासी बन गए, सारी मानवता के लिए और खास ब्राह्मण परिवार के लिए ये दिन बहुत बहुत महत्व का दिन बन गया, क्योंकि हम सबके सामने गृहस्थ व्यवहार में रहते, बल्कि वो गृहस्थ लौकिक की बजाय ये जो अलौकिक बड़ा परिवार बन गया, सबके साथ रहते मनुष्य जीवन का जो सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य, उसको प्राप्त करने में सबसे आगे हम सब के लिए जो एग्जाम्पल बने, मिसाल बने, शिव बाबा के साकार माध्यम होने के नाते और उसके साथ साथ ईश्वरी विद्यार्थी के रूप में, राजयोगी के रूप में, राज ऋषि के रूप में ब्रह्मा बाबा ने जो अपने जीवन का लक्ष्य बनाया, उसको उन्होंने पास विद ऑनर क्या होता है, सबके लिए वो मिसाल कायम किया कि अभ्यास करते करते संपूर्ण निर्विकारी जीवन और जो अनेक जन्मों का हिसाब है उसको योग अग्नि से भस्म करके कर्मातीत स्थिति को प्राप्त किया और उसके साथ साथ जो भी मानव मूल्य हैं, ईश्वरी धारणाएं हैं, दिव्य गुणों की धारणाएं हैं और साथ साथ बेहद विश्व की आध्यात्मिक सेवा है, रूहानी सेवा है, जिसमें बाबा ने मनसा वाचा कर्मणा तन मन धन से हर तरह से ईश्वर प्रति समर्पित होकर के ऐसा महान कार्य किया जिसका मिसाल और कोई मिलता नहीं। सारे विश्व की आत्माओं के लिए वो मिसाल बने, जिस कारण से ही उनको शिव बाबा ने टाइटल दिया आदि देव प्रजापिता ब्रह्मा का। हम सभी भाई बहनें स्वयं को इसी आधार से ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहलाते हैं। ऐसा आदर्शमय ईश्वरी परिवार जहां माता पिता और बहन और भाई, इससे अधिक और कोई रिश्ते नहीं है, मामा चाचा वो नहीं है। ये अद्भुत परिवार का पिताश्री ब्रह्मा बाबा हम सब का प्यारा बाबा है, इसलिए प्यारा है कि हम सब के लिए जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, हमें जीवन कैसे जीना चाहिए, मनुष्य जीवन पाकर हमें कैसे सुख से जीना चाहिए, कैसे शांति से जीना चाहिए, कैसे जीवन में पवित्रता को धारण करके जीना चाहिए, कमल पुष्प समान जीवन क्या है, वो बाबा ने बहुत सहज सरल रीति से हम सब के लिए अपना जो मिसाल कायम किया। बाबा स्वयं ऐसा असाधारण पार्ट बजाते हुए, शिव बाबा का साकार माध्यम होते हुए स्वयं को इतना गुप्त रखा, जो उनको देखने वाले, इन चरम चक्षुओं से देखने वाले तो साधारण ही समझते, लेकिन आप हम सभी जो महान भाग्यशाली आत्माएं हैं, जिनको ईश्वरी ज्ञान और योग के द्वारा शिव बाबा से दिव्य बुद्धि प्राप्त हुई, दिव्य चक्षु प्राप्त हुआ अथवा दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई, उनको भली भांति समझ में आया कि वास्तव में ये साधारण ब्रह्मा बाबा साधारण नहीं, ये तो सारे सृष्टि चक्र में ये आत्मा तो सर्वश्रेष्ठ पार्ट बजाने वाली असाधारण। शिव बाबा ने उनका साकार माध्यम क्यों एडॉप्ट किया, کوئی تو حساب ہوگا، جس کو بابا نے خود ہی بہت سندر شبدوں میں بہت سندر ڈھنگ سے ایکسپلین کیا ہے، برہما کا دن اور برہما کی رات بڑی اچھی طرح سمجھا کر کے کہا، سری نارائن کا دن اور سری نارائن کی رات نہیں، بھلے ہی یہ آتما وہی آتما ہے جو ستیگ میں پہلے جنم میں سری کرشن ہے، جو بڑا ہو کر سری نارائن بنتے ہیں اور 84 جنم لینے کے بعد وہی آ کر کے سادھارن تن میں وہ آتما ہے، اس حساب سے کہ اس سرشتی پر سب سے نمبر 1 پاون شریشت سروگن سمپن آتما اسی کے ساکار مادھیم کو شیو بابا نے اپنے وشو کو پریورتن کرنے کے کارے کے نمت بنایا ہے، بھل وہ اویکت ہیں لیکن اویکت اپنے بچوں سے سنمکھ ملنے آتے ہیں اور ان سے ملنے والے بچے کتنے مہان بھاگیشالی ہیں، یہ تو آپ ہر ایک اپنے دل سے پوچھیں، اس کی خوشی اس کا آنند جس کے لیے بھکتی میں لوگ بھگوان سے ملنے کے لیے کیا کیا کرتے ہیں کیا کیا کرتے رہے ہیں، سنیاسی سب کچھ چھوڑ کر اس پراپتی کے لیے تپ کرتے ہیں ہٹ کرتے ہیں، لیکن بابا کا کہنا ہے میں نہ جپ سے نہ تپ سے نہ ہٹ سے نہ تیرتھ یاتراؤں سے ملتا ہوں، میں تو اپنے بچوں سے اپنے سمے کے انوسار سوئم ہی آ کر سنمکھ ملتا ہوں۔ تو جس ساکار مادھیم کا شیو بابا نے پچھلے 65 سال سے، پہلے 33 ورش ساکار میں اور پھر 33 ورش شروع ہوا ہے یہ 33rd اویکت روپ سے پارٹ بجایا ہے، ان کے ساکار مادھیم کہو یا تو اپنے پیارے برہما بابا سے ملنے کا ہمیں 1959 میں پہلا موقع ملا تھا، جولائی 59 جب 6 مہینہ ہوا تھا ہمیں گیان میں، تب تک پتر ویوہار کے دوارا بابا سے ملن ہوتا رہتا تھا، ہم بامبے میں تھے اور بابا سے پہلی بار ملنے سے پہلے مما سے بھی بامبے میں ملے تھے، ان کی پالنا ملی، لیکن خاص آج جو اس کلاس میں آپ سب کے سنمکھ کچھ انبھو آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں بتانے کے لیے، جب ساکار بابا کے سنمکھ بیٹھے تو جیسے ان ٹھنڈی کے دنوں میں دھوپ میں بیٹھتے ہیں تو ٹھنڈی دور ہو جاتی، اسی طرح سے بابا کے سامنے بیٹھے اور ان کے دوارا گیان سوریا سوئم سے بابا کیسے آ کر ہم بچوں سے ملتے ہیں بات چیت کے بنا سائلنس میں، दृष्टि के द्वारा। शब्दों की जरूरत नहीं रहती, जैसे सूर्य से हमें गर्माइश अपने आप मिलती है, इसी प्रकार बाप दादा के सन्मुख बैठे दृष्टि मिली और स्व अनुभूति ऑटोमेटिक, ईश्वर अनुभूति, उस समय का वो अतीन्द्रिय सुख का जो आनंद, वो कभी भूलेगा नहीं। जैसे कि आत्मा ढूंढ रही हो उसी सुख को, वो बिल्कुल साइलेंस में, शांति में बाबा के सन्मुख बैठे, और हम 10 दिन उस समय बाबा के पास रहे, जब बाबा के सामने मिलते, क्योंकि मिलना तो सारे दिन में कई बार होता, तो बाबा पहले पहले तो दृष्टि देते, फिर कोई महावाक्य, कभी ज्ञान की गहराई के और कभी योग की गहराई के सुनाते। उन महावाक्यों में व्यक्तिगत हमारा अपना कल्याण और साथ साथ विश्व का कल्याण समाया। ब्रह्मा बाबा का जो पाठ और फिर उनके द्वारा शिव बाबा का पाठ, दोनों साथ साथ कैसे चलते, उसको अनुभव करने का वो मौका मिला हमें। शुरुआत 59 से हुई और जब तक बाबा साकार में रहे, काफी समीप आने का मौका मिला, काफी समीपता से बाबा को देखने का मौका मिला, और उस समीपता में जो गायन है परमात्मा पिता का, मात पिता का, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा ते सुख गनेरे, वो अनुभव प्रैक्टिकल में हर पल करते रहे। और साकार बाबा ने अपने समीप लाकर योग के समय, बाबा की वाणी जिस समय चलती उस समय, उसके बाद अलग से मिलने का, साथ में भोजन कराने का, साथ में पिकनिक कराने का, साथ में बैडमिंटन खेलने का, हर तरह से जो बाबा के लिए कहा जाता कि आप मात पिता सखा सब हैं, वो प्रैक्टिकल अनुभव कराया। एक प्रकार से मैं मानता हूं वो हमारी बचपन की बाबा ने पालना उस ढंग से की, रूहानियत से, कि संग का रंग दे दिया हमें। उसके बाद वो 10 दिन पूरे हुए, फिर बाबा से बॉम्बे में मुलाकात। हमारी 40 दिन की छुट्टियां थी, नेवी में थे उस समय, वो 40 दिन बाबा के साथ बिताए, और उन 40 दिन में बाबा ने जैसे पहले बच्चे को परवरिश करके बड़ा किया था, फिर उसके बाद सेवा करना सिखाया, और हर प्रकार की सेवा, ज्ञान समझाने की भी सेवा, तो अन्य यज्ञ की जो एक्टिविटीज हैं उससे कनेक्शन भी रखा, इतने तक के उस समय सोमनाथ मंदिर उसका रेनोवेशन हुआ था, उसका उद्घाटन हुआ, वहां जो वीआईपीस आए थे उनका बाबा ने अखबार में पढ़ा, बॉम्बे में थे उस समय, तो बाबा ने खास उनकी सेवा के लिए भेजा। पंडित जी थे, जवाहरलाल नेहरू जाम साहब थे, जामनगर के राजा, एक प्रकार से बाबा की जो बातें सुना रहा हूं उसमें खास क्या क्या देखने को मिला कि सर्वशक्तिवान बाप की और ज्ञान सागर बाप का जो ज्ञान है, जिसको वो प्राप्त है, वो सबसे बड़ा धन है, सबसे बड़ा खजाना है, और उसके दिल में दातापन का संस्कार ऑटोमेटिक आ जाता है। बाबा को हमेशा सबके कल्याण की भावना रहती थी और उस कारण से हम बच्चों को भी उसी तरफ लगाते। ये नहीं कि हम ऐसे बड़े लोगों से मिलने जाएं और उनसे हमें कोई अपेक्षा है, कुछ चाहिए हमें, नहीं, लेकिन उनको भी देना है क्योंकि उनके पास ये खजाना नहीं है। तो ये बाबा ने उसी समय से जैसे हमें दिल में भरा। ये भी हमने सुना था कि उससे कुछ समय पहले मनोहर दादी, कुछ और बहने, शायद गुलजार दादी, उन्होंने भी गवर्नमेंट की सेवा दिल्ली में की थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू को मम्मा की स्पीच के रिकॉर्ड भी उनको पेश किए थे। बाबा का भाव ये नहीं था कि बड़े बड़े लोग मुझे जाने और मेरे पास आए, लेकिन ये था कि ये बड़े लोगों को ज्ञान मिले तो इनको भावना जो बैठेगी, जो आज भी बाबा कहते हैं वीआईपी की सेवा करो, इसलिए कि एक वीआईपी को समझ में आ जाए तो उसके कारण अनेक साधारण की सेवा जो है वो बहुत अच्छी तरह हो जाती है। एक चीफ मिनिस्टर यहां बाबा से मिलने आता है तो उसके सारी स्टेट की सेवा हो जाती है, वो प्रैक्टिकल हम लोगों ने देखा है। तो इस तरह से बाबा, फिर भी बाबा कहते थे देखो बाबा जो आकर के बच्चों को ज्ञान देते हैं, जब तक किसी को दिव्य दृष्टि नहीं है, दिव्य चक्षु नहीं है, बाबा की पहचान नहीं है, बाबा में निश्चय नहीं है, तब तक वो बाबा के सामने आने पर भी उसको समझ में नहीं आएगा। तो एक तरफ बाबा हम बच्चों को नशा चढ़ाते कि बाप आप बच्चों के ही सन्मुख आते, और दूसरी तरफ बाबा ये भी चाहते थे कि ये सबके कल्याण के लिए, बड़ों बड़ों को भी ज्ञान दो, छोटों के लिए भी करो, साधारण के लिए भी करो, और उसके लिए बाबा को हर तरह से प्रबंध कराने का बहुत ख्याल रहता था। और वो ट्रेनिंग हमें 40 दिन में बाबा ने खूब दी थी। और बाबा का सबसे बड़ी बात तो ये होती थी कि ज्ञान तो छोटे बच्चे भी समझ जाते हैं, रचता और रचना का ज्ञान वो तो छोटे बच्चे भी समझ जाते हैं, माताएं भी समझ जाती हैं, भाई भी समझ जाते हैं, लेकिन सबसे मुख्य बात है कि जो जन्म जन्मांतर का हिसाब जमा है, उसको बाबा कहते थे जन्म जन्मांतर के, खासकर द्वापर और कलयुग के 63 जन्म जो बिताए हैं, वो 5 विकारों के वश बिताए हुए हैं, उसका हिसाब बहुत जमा है सभी का, और उस हिसाब को खत्म करने के लिए, उसको काटने के लिए बहुत योग का बल चाहिए, योग अग्नि चाहिए। और वो बाबा इस बात पे जोर देते थे, उसके लिए कहते थे अपना चार्ट रखो। तो बाबा ने वो भी सिखाया चार्ट कैसे रखना है, सारे दिन में याद का चार्ट, सारे दिन में ज्ञान जो हम सवेरे सवेरे सीखते हैं उसको कैसे हम सारे दिन में यूज करें, और फिर इसके साथ में धारणा में सब बातों को कैसे लाएं, खान पान की शुद्धि रखें जिससे हमको मदद मिले। और वो चार्ट बाबा चाहते थे कि हर एक बच्चा लिख करके बाबा को भेजे, और वो हम भेजते थे। फिर बाबा ने जब कुछ वर्ष बीते, बाबा की कुछ बातें सामने आई कि हर एक बच्चे को बाबा पर्सनली कैसे पहचान करके और उनके अंदर क्या क्या गुण हैं, उनके अंदर क्या क्या बातें हैं, उसको सेवा में लगा के उसका भाग्य बनाने का बाबा ने प्रैक्टिकल में ब्रह्मा बाबा ने जैसे कि अपने बच्चों को पहचानता हो, हर एक के गुणों का, हर एक की विशेषताओं का ईश्वरीय सेवा में उनको लगाकर उनका भाग्य बनाया। तो मेरे पर्सनल लाइफ की बातें कुछ ऐसी हैं, बहुत छोटी उम्र थी 20-22 साल की, जब मुझे पहली बार 2 महीने की छुट्टियां ज्ञान में आने के बाद बितानी थी, वो ट्रेनिंग होने के बाद, बाबा से ट्रेनिंग लेने के बाद, तो मैंने बाबा को लिखा कि मेरी ये 2 महीने की छुट्टियां हैं, आप जहां भी चाहें मुझे भेजें। साथ में ये भी लिखा कि मेरी कुछ हॉबीज हैं, फोटोग्राफी या फोटो फ्रेमिंग या तो साथ में कलरिंग, ऐसी ऐसी बातें। तो बाबा ने उसका उत्तर लिखा, बच्चे अभी तो बच्चों की एक ही हॉबी होनी चाहिए। कौन सी? सर्विस, सर्विस और सर्विस। उसके बाद हमारे मन में वो पक्का हो गया कि ये जो भी समय अभी हमें मिला है, इसको हम और तरफ ना लगा के सेवा में ही लगाएं। और बाबा फिर जैसे के रिफ्रेश करके हम मधुबन आए, बाबा से मिले, 4-5 दिन रहे और फिर बाबा ने जयपुर भेज दिया। जयपुर में नई सेवा थी, बहुत मजा आया वहां हर तरह की सेवा करने का। लेकिन ये सब करते हुए भी बाबा का बहुत ध्यान रहता था कि और ये बच्चे क्या कर सकते हैं, इनके अंदर और क्या विशेषता है। तो 1964 में, 63 तक मैं नेवी में रहा, फिर नेवी छोड़ दी थी, वो भी बड़ी कहानी है। बाबा ने कैसे मदद की उस समय, जो बच्चे दिल से, सच्ची दिल से बाबा के कार्य में सहयोगी बनते हैं, बाबा कैसे उनको मदद करता है। जो असंभव बात भी संभव होती है, वो अनुभव भी हमने उस समय किया था। और उसके बाद फिर पूरा ही जब सेवा में लगे, उन्हीं दिनों में हमारे बॉम्बे के रमेश भाई, उषा बहन, वो भी ज्ञान में आ गए हुए थे। रमेश भाई को आया कि हम एक एग्जीबिशन तैयार करें। तो फिर उन दिनों में निर्मल शांता दादी, पुष्प शांता दादी, फिर दादी जी भी वहां आ गए थे। बहुत सुंदर एग्जीबिशन, पहली वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल एग्जीबिशन बनाई गई थी, विश्व नव निर्माण प्रदर्शनी। वो प्रदर्शनी के बनने के बाद, उसके लगने के बाद जो सेवा हुई, उससे सेवा में बहुत एक विशालता आनी शुरू हुई, परिवर्तन आना शुरू हुआ। और बाबा की खास बात जो उन दिनों में, कि जो भी मुख्य मुख्य भाई बहने, दादियां थी, मुख्य भाई थे सारे भारत से, उनको पहले बॉम्बे में बुलाया। बॉम्बे के बाद फिर वही एग्जीबिशन दिल्ली में हुई, फिर दिल्ली के बाद बाबा ने कलकत्ता में सबको भेजा। एक प्रकार से, एक तो संगठन की शक्ति क्या है, और साथ साथ बेहद की सेवा के लिए हर एक का सहयोग कैसे उसमें आए, तो वो अनुभव बाबा ने उन दिनों में कराया। और वहां से ही बाबा ने, जैसे कानपुर में एग्जीबिशन चल रही थी, वहां भेजा था हमें। उन दिनों बाबा की वाणी में आया कि बच्चों को ऐसा चित्र बनाना चाहिए जिससे ये सिद्ध हो कि भारतवासी, आप ही सतयुग में इतने महान पूज्य थे, और वही फिर 84 जन्म लेते लेते द्वापर से लेकर के पुजारी बन गए। तो वहां से, कानपुर से ही मैंने उसी बात को लेकर के एक छोटी सी ड्राइंग बना के बाबा को भेजी। बाबा ने सीढ़ी का चित्र जो बना बाद में, पहले तो बाबा ने लिखा, बच्चे ये क्या कीड़े मकोड़े बना के भेज दिए। लेकिन मैं फिर सोचा कि मैं इसको अच्छी तरह बनवाऊं आर्टिस्ट से, तो बाबा को मतलब चित्रों के द्वारा, स्लाइड्स के द्वारा, प्रदर्शनी के द्वारा जो सेवा अधिक से अधिक हो सके उसका बहुत रहता था, और उसके अंदर भी कुछ नवीनता हर प्रदर्शनी में हो, बाबा का जोर रहता था। कभी प्रोब का एक स्टॉल बनवाया, कभी गीता के भगवान कौन है उसका स्टॉल बनाया, कभी प्रश्न उत्तर की एक वो प्रश्नावली बनवाई, और वो चित्र जब सीढ़ी का चित्र बनवा करके हमने आर्टिस्ट से उसकी एक स्लाइड बनवाई, फिर बाबा को जाकर के दिखाई मधुबन में, तो बाबा को बहुत पसंद आई। उसके बाद फिर बाबा ने उसको और रिफाइन करवाया, उसमें और क्या क्या ऐड होना चाहिए। उसके चित्र बनने के बाद बॉम्बे से जब भी मैं कोई और समाचार बाबा को लिखता था तो बाबा उत्तर में लिखते थे, बच्चे ये सब तो ठीक है, किसको कोर्स कराया, कहीं प्रदर्शनी की, कहीं, और नया चित्र कौन सा बना रहे। फिर बाबा को खुद को बहुत इंटरेस्ट था, तो गीता का भगवान कौन है ये सिद्ध होना चाहिए, जब तक ये सिद्ध नहीं हुआ, भले कितना भी भक्ति में गीता लोग पढ़ें, जब तक उनका बुद्धि योग शिव बाबा के साथ नहीं लगा है उनको शक्ति नहीं मिलेगी, तब तक पतित से पावन नहीं बनेंगे, परिवर्तन नहीं होगा। उसके लिए ये आप बच्चों को कैसे भी सिद्ध करना है, और जब ये सिद्ध करेंगे तभी जय जयकार होगी। फिर बाबा ने खुद एक चित्र बनाया पेंसिल से, रेड पेंसिल से, एक तरफ गीता की पुस्तक बना के उस पर कृष्ण का जैसे चित्र हो और उस पर श्री कृष्ण की महिमा, और दूसरी साइड में त्रिमूर्ति का चित्र लगा के और उसके ऊपर शिव बाबा की महिमा, एक एक बात सामने सामने, वो रचता है वो रचना है, वो त्रिमूर्ति का रचता है, वो त्रिमूर्ति में से विष्णु का साकार रूप है, उसके मात पिता है वो सर्व का मात पिता है, इस तरह से कंट्रास्ट बना करके उसके नीचे लिखा हुआ था, अब आप सोचिए गीता का भगवान कौन है। तो वो चित्र बाद में बाबा ने हमें भेजा, फिर उसको और रिफाइन करवा के आर्टिस्ट से जब बनवाया और बाबा को बहुत पसंद आया, बाबा के बुद्धि में सारा विश्व सदा रहता था कि सारे विश्व को ये फट से पता लगना चाहिए। दादी जी भी उस समय बॉम्बे में थे, बाबा ने यहां से लिखा मधुबन से कि ये चित्र बहुत अच्छा बना है, बच्चे इसकी 1,00,000 कापी छपवा करके सबको बांटनी है, और वो साइज बड़ा था। जब वहां लिख करके आया तो प्रिंटिंग प्रेस से प्रिंट कराना था, दादी जी कहते हैं भाई ऐसा है पहले आप 2,000-3,000 प्रिंट कराओ। मैंने कहा बाबा ने लिखा है लाखों लाख, कम से कम 1,00,000 छपवाओ, आप 2,000-3,000 कह रहे। दादी कहती है आपको मालूम नहीं है, क्योंकि दादी जी को तो ज्यादा अनुभव था कि देखना आप जब तक आप प्रिंट कराएंगे बाबा इसमें और कुछ करेक्शन करके भेज देंगे, क्योंकि ये एक ब्रह्मा बाबा की क्वालिटी कहो, उनका विशेष गुण कहो, कि 100% परफेक्ट चीज बननी चाहिए। इसलिए जब तक वो परफेक्शन नहीं आई तब तक करेक्शन उसमें होती रहती थी। तो वो बाबा ने पहले जब कहा 1,00,000 छपाओ, तो दादी जी से हमारी थोड़ी बातचीत हुई तो हम लोगों ने फिर 5,000 छपवाया। परंतु बाबा की बात को सुन करके समझ करके और उसी भावना उसी निश्चय से हम सेवा करें, वो कहीं कहीं पर हमारे भाई बहने डर जाते हैं कि अगर हम ये बात करेंगे तो हमारी अपोजिशन हो जाएगी, आर्य समाज वाले क्या बोलेंगे, सनातन धर्म वाले क्या बोलेंगे, वो शास्त्री क्या बोलेंगे। तो फिर उसके बाद एक आधी बार और ऐसे 5000 छपवा करके सभी सेंटर्स ने बांटा, क्योंकि उन दिनों में सेंटर भी थोड़े थे। आज हमारी लिखत में आता है 6000 सेंटर है, 80 देशों में सेंटर है। उन दिनों में कितने थे, बाबा के समय 25 सेंटर थे सिर्फ सारे भारत में, तो संख्या भी कम थी, सेवा करने वाले भी कम थे, लेकिन बाबा की दृष्टि में सदा सारा विश्व रहता। कभी बाबा विदेश को याद करके उनके लिए डायरेक्शन देते, खासकर हम बॉम्बे में थे जहां पर विदेश के लोग आते रहते हैं, खास बाबा ने कहा कि आप अखबार पढ़ो जरूर, और उसमें पढ़ो कि कौन कौन भारत में आ रहे हैं और उनका पता करो कहां ठहरते हैं, फिर उनसे टाइम लेकर के उनको मिलो और उनको खास बाबा के ये जो विशेष चित्र हैं त्रिमूर्ति गोला और कल्प वृक्ष, ये उनको प्रेजेंट दो। और आपको शायद मालूम होगा 1964 में बॉम्बे में बहुत बड़ी क्रिश्चियंस की कॉन्फ्रेंस हुई थी, यूक्रिस्टिक कॉन्फ्रेंस, जिसमें पोप उस समय जो थे वो भी आए थे, और उसके अलावा बहुत सारे बिशप कार्डिनल्स बहुत लोग आए थे। और उसके लिए बाबा ने ऐसे डायरेक्शन दिए कि बच्चे इनकी देखो ये बड़ा अच्छा मौका है सारे विश्व को बाबा का संदेश देने का। तो शिव बाबा की और ब्रह्मा बाबा की इतनी बड़ी अथॉरिटी वो कैसे सिद्ध होती है, वो आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं। एक तो बाबा ने पोप को इतना बड़ा टेलीग्राम भिजवाया इंग्लिश में। नॉर्मली पोप आया जब ही तो सब लोग गवर्नमेंट के लोग दूसरे सब उसकी ब्लेसिंग्स लेने जाने के लिए वहां उत्सुक रहते थे, लेकिन बाबा ने उनको क्या टेलीग्राम भेजा, वो हम बच्चों को बड़ा उससे नशा चढ़ता है। बाबा ने उनको टेलीग्राम भिजवाया कि आपका भारत आने का स्वागत है, भारत परम पिता परमात्मा की अवतरण भूमि है, और वो अवतरित होकर सारे विश्व की आत्माओं को 100% पवित्रता सुख और शांति संपन्न सत्युगी दैवी स्वराज का अधिकार प्राप्त कराते हैं। आपका भी वो अधिकार प्राप्त करने का ईश्वरी जन्म सिद्ध अधिकार है। तो इस तरह ऐसे नशे के टेलीग्राम बाबा ने जब भिजवाया उनको, और फिर जब वो पहुंचे बॉम्बे में तो दादी जी भ्राता जगदीश चंद्र जी रमेश भाई दादी निर्मल शांता और दादी रतन मोहिनी ये सब उनसे मिले, और उनको बाबा की जो रियल गीता की एक पुस्तक थी सच्ची गीता इंग्लिश में उसकी एक कॉपी और साथ में प्रसाद उनको जाकर के दे के आए थे। उसने भी अपनी तरफ से कमेमोरेटिव मेडल्स दिए इनको हरेक को, और बाद में वहां से थैंक्स का लेटर लिखा और लिखा कि ये किताब हम हमारी लाइब्रेरी में रख रहे हैं। तो इस तरह से बाबा की बेहद की सेवा की जो एक दृष्टि रही हमेशा, और खासकर मैं तो कहूंगा ब्रह्मा बाबा का जो सारे जीवन का अनुभव था, एक फैमिली मैन होने के नाते और एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन होने के नाते और बड़े बड़े लोगों के साथ जो संपर्क में आने के नाते, वो सारी बातों को ध्यान में रखते हैं। उस हिसाब से बाबा का ईश्वरी सेवा में हम लोगों को जो आज हम खुद मंथन करते हैं, उन दिनों में तो कुछ करने की जरूरत नहीं थी, बाबा के डायरेक्शन आते रहते थे और हम उसको अमल में ला करके सेवा करते रहे। उन्हीं दिनों में फिर उसके एक आधे साल के बाद फिर बाबा को आया कि नहीं, अभी अभी भारत में भी सेवा और होनी चाहिए, और खास बॉम्बे के लिए बाबा को बहुत रहता था, क्योंकि बॉम्बे में हर साल नहीं तो एक साल छोड़ के, जो मैं 10 साल बाबा को देखा तो 10 साल में 5 या 6 बार बॉम्बे में आकर के 2-2, 3-3 महीना बाबा रहे उन दिनों में। तो एक साल बाबा ने खास एक एग्जीबिशन चौपाटी पर एक नया हॉल बना था, बिरला क्रीड़ा केंद्र, वहां एग्जीबिशन हुई। तो बाबा ने कहा, बच्चे बॉम्बे की जितनी एसोसिएशन है, तो बाबा ने खास कहा कि देखो बॉम्बे में बहुत एसोसिएशन बनी हुई है, उन सब की लिस्ट इकट्ठी करो और लिस्ट के अनुसार पर्सनली हर एक के नाम पर इनविटेशन कार्ड जाना चाहिए। बॉम्बे में उस समय 4 सेवा केंद्र थे, जो भाई बहने उस समय थे सब ने मिलकर के मीटिंग की, 10,000 कार्ड छपवाए, 10,000, और हर एक क्लास के भाई बहनों के 2-2, 3-3 के ग्रुप बना करके कार्ड उनको, वो एसोसिएशन कौन कौन सी जिनके हम सब, वो लिस्ट ला करके उनकी टाइपिंग किया। उसमें इंडियन मर्चेंट्स चैम्बर, इंडियन फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्री, इंडियन कॉटन मर्चेंट्स एसोसिएशन, बुलियन मर्चेंट्स एसोसिएशन, डायमंड मर्चेंट्स एसोसिएशन, क्लॉथ मर्चेंट्स एसोसिएशन और आयरन मर्चेंट्स एसोसिएशन, इस तरह से ऑटोमोबाइल मर्चेंट्स एसोसिएशन, ऑटोमोबाइल पार्ट्स रखने वालों की एसोसिएशन, ये सारी इकट्ठी की। उसमें कुछ डुप्लीकेट भी होते थे, लेकिन मोस्टली उनमें से सिलेक्ट करके करके और लोगों के घरों में जाके 2-2, 3-3 भाई बहनों के ग्रुप ने बाबा की डायरेक्शन अनुसार वो कार्ड बांटे और उसकी रिजल्ट इतनी अच्छी निकली, इतने अच्छे अच्छे लोग उस एग्जीबिशन में आए, बहुत सुंदर उसका कार्यक्रम। और इसी तरह से बाबा को ये भी रहता था कि जब कोई नई एग्जीबिशन करते हो तो उसका नाम भी नया कुछ रखो। तो वो जो एग्जीबिशन थी उसका नाम भारत दी वर्ल्ड्स लाइट हाउस इस नाम से रखा था। ऐसे ही एक और एग्जीबिशन की थी जिसका नाम रखा था गेटवे टू पैराडाइज, और पहला तो आपको सुनाया वर्ल्ड रिन्यूअल, विश्व नव निर्माण। तो इस तरह से बाबा ने एग्जीबिशन के द्वारा बहुत अपने सामने डायरेक्शन दे दे करके, उसमें नए नए चित्रों की एडिशन हुई और लगभग सारे भारत में वो प्रदर्शनी करवाई। और बॉम्बे की टीम थी उस समय, जैसे दादी जी रमेश भाई, उषा बहन, रत्नमयनी दादी, कुछ और भाई बहने साथ में, और हम लोग सब टीम की टीम सब जगह जाती थी। गुजरात के भी सेंटर्स काफी उसके बाद खुले, इसी तरह से और कई स्थानों पर, पंजाब में भी गए, शिमला में भी गए, यूपी में भी गए, बिहार में, पटना में भी गए, जिसके फलस्वरूप सारे भारत में एक प्रकार से सेवा की धूम मची। क्योंकि बाबा को हमेशा रहता था कि इतने बच्चे हैं बाबा के, और कई अभी तो जिनको अभी वर्षा मिला नहीं है, उन सबको कैसे ये संदेश मिलेगा। इसके पहले के लड़ाई वगैरह शुरू हो जाए, सबको संदेश मिलना चाहिए। तो ब्रह्मा बाबा एक तरफ अपनी तपस्या करते थे, वो भी हमने देखा, बाबा की सुबह की तपस्या, मुरली के बाद सबको पत्र वगैरह लिख के उसके बाद झोपड़ी में जाके बैठ के तपस्या, अपने रूम में बैठ के तपस्या, सैर करते हुए भी याद में कैसे रहना है, खेलते हुए भी याद में कैसे रहना है, प्रैक्टिकल भोजन करते समय हमें कैसे साइलेंस में भोजन करना है, एक एक चीज बाबा ने हम सब के लिए, मैं तो ऐसा मानता हूं कि हम सब के लिए, जो बिजनेस वगैरह में कई बातें सिखाते हैं रोल मॉडल फलाना टीरा, हम सब का रोल मॉडल ब्रह्मा बाबा प्रैक्टिकल हमारे सामने, हर चीज आइडियली क्या होनी चाहिए वो उन्होंने हमें एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करके, और उसके साथ साथ बाबा को हमेशा ये रहता था एक खास बात, बाबा कहते थे कि योग बल से एवर हेल्दी लाइफ बननी चाहिए, जिनका योग एक्यूरेट है उनके विक्रम विनाश होते हैं, तो उनकी लाइफ बहुत हेल्दी और लंबी होती। उसके मिसाल थे निर्मल शांता दादी के लिए, उनकी जन्मपत्री में लिखा हुआ है, बाबा की जो बड़ी बेटी कलकत्ता में, उसमें लिखा हुआ था कि इनकी आयु जो है वो 30 वर्ष की है और आज वो लगभग 80 वर्ष की हो गई। ब्रह्मा बाबा इसी तरह से ब्रह्मा बाबा की अपनी आयु 60 साल की लिखी हुई थी और बाबा 93 की एज तक बिल्कुल अपराइट। हम लोगों को फिर भी ये सोफा वोफा रख करके बैठ करके क्लास करा रहे हैं, बाबा कभी संदली पर बैठ करके ही क्लास कराते, कभी सोफा नहीं, कभी पीठ को कोई उनको रेस्ट नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, एकदम सीधे, क्योंकि बाबा कहते थे ये राज योग से राजा ही प्राप्त करते हैं, तो राजाओं की तरह बैठते, प्रैक्टिकल करके दिखा। और बड़ा बैलेंस्ड लाइफ, जीवन में बैलेंस क्या चीज है वो प्रैक्टिकल बाबा ने हम लोगों को दिखाया। और सबसे बड़ी बात, देश का विदेश का, बड़े से बड़ा छोटे से छोटा, उम्र में बड़े या उम्र में छोटे, कोई भी सामने आ जाए, हर एक को वो महसूसता हो ये बाबा तो मेरा है। इतना प्यार बाबा से हर एक को मिला, जो भी संपर्क में आए, अगर कोई वीआईपी भी आए तो उनके साथ भी बाबा उसी हिसाब से बड़े प्यार से मिलते, वो कभी भूलते। बच्चे मिले तो वो कभी भूलते नहीं। भिन्न भिन्न ईश्वरी जीवन के भिन्न भिन्न पहलू हैं और उनकी वैल्यू बाबा को कितनी थी, ब्रह्मा बाबा को, उसमें योग के बारे में जो आपको सुना रहे थे कि योग से कैसे सदा स्वस्थ रहना है, तो बाबा का कहना था कि जितना शिव बाबा से बुद्धि योग लगा रहेगा उतना ही विचार भी उच्च रहेंगे, पास्ट का हिसाब भी चुकतू होगा और सदा स्वस्थ रहेंगे। और वो प्रैक्टिकल बाबा की अपनी लाइफ से, मुश्किल से कभी जो 10 साल में हमने देखा, एक बार बाबा की वाणी सुबह को नहीं चली थी, तो जैसे ही वाणी नहीं मिली तो ब्रिज इंदिरा दादी जो बॉम्बे में थी उन्होंने बाबा को फोन किया कि हमको ये वाणी नहीं मिली है, इसका मतलब बाबा आपकी तबीयत अच्छी नहीं है। तो बाबा ने कहा नहीं बच्ची, थोड़ा बाबा को आराम की जरूरत थी, पर उसके बाद देखा जितने और वर्ष बाबा के थे एक बार भी बाबा ने मिस नहीं की, केवल 18 जनवरी 1969 उस दिन बाबा सुबह को वाणी नहीं चलाई। तो रात को वाणी चलाने के बाद बाबा का दूसरा ये रहता था कि योग बल से बैठे बैठे हमें शरीर छोड़ना है, वो प्रैक्टिकल बाबा ने किया। जो वही संस्कार सत्युग में जाएगा कि अपने इच्छा से हम शरीर को छोड़ सके, वो बाबा ने प्रैक्टिकल छोड़। दूसरी साइड बाबा को अमृत वेले का बहुत बहुत महत्व था। हम कभी बाबा को लिखते, बाबा देर से सोए इसलिए नहीं उठ पाते, तो जवाब आता था, बच्चे आप राजयोगी हो, कैसे भी करके आपको उठना है। ये नहीं कहा अच्छा कोई बात नहीं, नहीं, उसको पक्का किया। 4-5 घंटे नींद बहुत होती, कैसे भी करके सुबह को अमृत वेले उठना है, क्योंकि बाप समान स्थिति बनाने का जो गहराई में योग की जो अनुभूति करनी है वो अमृत वेले हो सके। दूसरा, बाबा को ज्ञान की जो डांस बाबा जब करते, डांस कहते हैं, मतलब बाबा जब ज्ञान सुनाते, इतना बाबा को एक एक ज्ञान के रत्नों की कितनी वैल्यू है वो देखने को मिलती। क्योंकि शिव बाबा जब नई बात कोई सुनाते तो ब्रह्मा बाबा को उसका बहुत बहुत महत्व, उस पर मंथन करते, और फट से दादी जी को, दीदी मनमोहिनी को दिल्ली में, दादी जी उस समय पटना में थी, उनको वहां पर, जगदीश भाई को या बॉम्बे में, चिट्ठी में फट से वो सारी ज्ञान की जो पॉइंट्स नई उस दिन मुरली में सुनी, क्योंकि बाबा कहते थे देखो वो जो नई नई पॉइंट्स है वो शिव बाबा आके सुनाते हैं, जो इसमें अनुभव की बातें हैं वो ब्रह्मा बाबा सुनाते, तो वो बाबा नई नई पॉइंट्स को इतना अच्छे ढंग से चिट्ठी में लिख करके फटाफट सबको भेजते, इतनी वैल्यू बाबा को थी। बाबा कहते थे बच्चे ये एक एक ज्ञान रत्न लाखों रुपए का है, एक भी तीर किसको लग जाए तो उसकी जीवन नर से श्री नारायण बन जाए, नारी से श्री लक्ष्मी जैसी बन जाए, इतना इसका महत्व है। और साथ साथ बाबा को ये भी बड़ा फखर था, जो अभी भी बाबा कई बार अव्यक्त मुरली में भी उस बात को, कि ये बच्चे कितने महान हैं जो कमल फूल समान पवित्र जीवन में रहते हैं, ये सन्यासियों को भी झुकाने वाले हैं, जो परिवार में रहते कमल पुष्प के समान पवित्र रहते हैं, जो वो कहते ये असंभव बात है ये प्रैक्टिकल करके। और ऐसे कई ऐसे भी बाबा के बच्चे, ऐसे महावीर बच्चे निकले जिन्होंने गंधर्वी विवाह बाबा की श्रीमत से किया, और वो प्रैक्टिकल में ऐसा उनका मिसाल दिल्ली में, बॉम्बे में और कई स्थानों पर, तो जो बाबा की श्रीमत से जिन्होंने किया वो ऐसे मिसाल, तो बाबा को अपनी श्रीमत की भी बहुत वैल्यू थी, कि बच्चे कोई भी कदम उठाते हो, कुछ भी करना है तो श्रीमत से करो। लेकिन बाबा सब की डिफिकल्टी को भी जानते थे, खासकर परिवार वालों को कहते थे बच्चे अगर बच्ची ज्ञान में चलती है तो बहुत अच्छा है, अगर वो ज्ञान में नहीं चलती तो उसकी शादी करवा दो, नहीं तो खानदान का नाम बदनाम होता। लेकिन बच्चों के लिए क्या कहा, बच्चे अपने आप जाके शादी करें, उसके लिए आपको अपना खर्चा करने की जरूरत नहीं, आपके धन की कितनी वैल्यू आपको होनी चाहिए, ज्ञान धन के साथ साथ जो मटेरियल धन है, बाबा ने इतना अच्छा बताया। बच्चे देखो कई पैसे वाले बाबा को आकर के दिखाते हैं, बाबा मेरे पास इतना है आपको जब चाहिए तो बताना, तो बाबा कहता है मैं भी उनके साथ युक्ति से चलता हूं, उनको कहता हूं आप अपने पास रख दो, जब जरूरत होगी बाबा इशारा देंगे, क्योंकि बाबा को पता है इसका मैं ले करके फिर इसको वापस भी तो करना होगा ना लाखों गुना, इसे तो मैं गरीब बच्चों का 1 रुपया 2 रुपया 10 रुपया लूं जिससे उनको वापस करूं तो उनको महल मिले, क्योंकि बाबा गरीब नवाज है, अमीर नवाज नहीं। तो ये बाबा की एक ऐसी बातें हैं जिसकी बड़ी गहराई है, और आज की जो सामाजिक समस्याएं हम बहुत सारी देखते हैं प्रैक्टिकल में, आप देखो उन सब का सॉल्यूशन बाबा की शिक्षाओं। जात पात की कितनी बातें आती हैं, बाबा ने कहा नहीं बच्चे आप सभी ईश्वरी परिवार के बच्चे हो, यहां सब एक समान है, लेकिन सबका स्टैंडर्ड ऊंचा कर दिया, ये नहीं कि सबको اچھا سٹینڈرڈ والے جو ہیں ان کو بھی کہیں نہیں تم بھی ایسا ہی بن جاؤ، نہیں، جو جن کا سٹینڈرڈ آف لیونگ کم بھی ہے بابا نے ان کو بھی اونچا اٹھایا اور جن کا اونچا ہے ان کو بھی ساتھ ملایا۔ بابا کہتے نہ بہت اونچا نہ بہت نیچا۔ تو ایسی اچھی اچھی باتیں جیون کی دھارنا کی بابا نے دی ہیں اور پریکٹیکل بابا نے کر کے دیا۔ کبھی کبھی تو ایسی بھی باتیں بابا نے تھوڑی تھوڑی دکھائی، بڑی ہنسی بھی آتی تھی۔ رمیش بھائی، اوشا بہن، میں مثال ان کا دے رہا ہوں، وہ پہلی بار مدھوبن میں آئے چکر لگا کے کہیں دلی ادھر پنجاب سے، ہم بھی اس سمے بائی چانس مدھوبن میں تھے، تو بابا نے کہا آج بچوں کو بابا کے ساتھ رائل ٹیبل پر بھوجن کا نمنترن ہے۔ اب ہم سوچ میں پڑ گئے کہ بابا کے روم میں جو ٹیبل، وہاں تو ہم بھوجن کیا بابا کے ساتھ، پھر رائل ٹیبل کون سا ہے؟ تو کیا دیکھا، پتھر کی سلیب جودھپوری، جو بالکل رف ڈف، کوئی پالش نہیں ہے، کوئی سیدھی نہیں ہے، اسی کا بینچ بنایا دونوں سائیڈ، اور اسی کو اینٹیں نیچے چنائی کر کے دو سلیب رکھ دی، وہ بابا کا رائل ٹیبل بن گیا، جس پر تھالی ادھر کو جائے تو کٹوری ادھر کو جائے۔ لیکن بابا کی یکتی کیا تھی، بھوجن پر جب بیٹھے تو جیسے کلاس میں آ کے پہلے درشتی دیتے ہیں، اس کے بعد وانی سناتے ہیں، پھر اس کے بعد ٹولی کھلاتے ہیں، وہاں پر بھی ایسے پہلے بیٹھے، ایک ایک کو درشتی دی، سب سارے پریوار کو، اور درشتی دیتے دیتے ان کو ایسا نشہ چڑھا دیا، یہ بھول ہی گیا کہ پتھر کے بینچ پر بیٹھے ہیں اور پتھر کا ٹیبل ہے، رائل، سب سے رائل ویکتی کے ساتھ بیٹھے، اس لیے وہ ٹیبل رائل ہو۔ اور بابا کو یہ بھی رہتا تھا کہ بچے جو ہیں یہ ایور ریڈی بنے، ایور ریڈی۔ اب ایور ریڈی کے تو ارتھ آج کل تو سب ایک ہی طرف لیتے ہیں کہ بھائی پتہ نہیں کب جانا پڑ جائے، لیکن بابا کا تو سیوا میں ایور ریڈی رہنے کا۔ تو اس کے لیے کئی بار ایسا انبھو کراتے تھے، ہم سوچ کے آئیں گے بابا سے ابھی کم سے کم ایک ویک تو ریفریش ہو کر کے رہیں۔ ایک بار ہم پہنچے، صبح کو پہنچے، بڑے پیار سے بابا نے گلے لگا کر کے ٹولی کھلا کر کے، اور دوسرے سیکنڈ پوچھنے لگے بچے تمہارا پروگرام کیا ہے؟ میں نے کہا بابا ابھی تو میں پہنچا ہوں، آپ سے مل رہا ہوں، کہ وہ تو بابا جانتے ہیں آج شام کو دیدی جا رہی ہیں جے پور، ان کے ساتھ آپ کو جانا ہے، وہاں پر میوزیم کے لیے ایک مکان دیکھا ہے، وہ فائنل کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ گئے، پھر دو دن تین دن لگے اس میں، فائنل کر کے واپس آئے، پھر بابا کے پاس ایک بار دلی میں ایسے پردرشنی ہو رہی تھی، پردرشنی بابا نے خود دیکھی، وہ ایک ہی پردرشنی بابا نے خود دیکھی تھی، ایک شاید ماؤنٹ آبو میں دیکھی، بابا کو بہت اچھی لگی، یہ 1965 کی بات کر رہا ہوں میں۔ تو بابا نے پردرشنی کی خوب مہما کی اور کہا کہ اب اس کے بعد یہ کلکتہ میں پردرشنی ہونی چاہیے، اور مرلی پوری ہونے کے بعد، ان دنوں میں بابا دلی گئے ہوئے تھے، جنوری 65 کی بات ہے، میں اس سمے ماتھر صاحب تھے، ڈاکٹر ایل ایس ماتھر، ان کے پاس ٹھہرے تھے، تو مرلی کے بعد مجھے بلایا کہ بچو تمہارا کیا پروگرام ہے ابھی؟ میں نے کہا بابا ابھی پردرشنی میں جائیں گے۔ کس لیے جائیں گے؟ میں نے کہا وہاں سمجھانے کے لیے۔ بولا وہ تو دلی میں بہت بچے ہیں۔ میں نے کہا پھر آپ جو کہے، بابا چاہتے ہیں یہ پردرشنی جا کے کلکتہ میں ہونی چاہیے، آپ جا کے تیاری کرو۔ میں نے کہا جی بابا۔ اسی سمے اوم پرکاش بھائی، ہمارے ریلوے منسٹر جو ابھی یہاں بھی ہیں، ان کو بلایا، اوم پرکاش کلکتہ کے لیے اگلی ٹرین کتنے بجے ہے؟ 7:30 بجے ہیں صبح کے، سردی کا ٹائم ہے۔ بولا بابا 9:30 بجے طوفان میل ہے، وہ گاڑی کا نام طوفان میل لیتی، سب سے زیادہ ٹائم تھی وہ، تو بولا 9:30 بجے ہے۔ کہا بچو جا کے تیاری کرو، اور 9:30 بجے کی جو ٹرین ہے اس میں بیٹھ کر کے جاؤ۔ آج کل تو ریزرویشن کی بات اس کی بات سب چلتی ہے، بابا کی جو آ گیا۔ اسی سمے ہم رجوڑی گارڈن سینٹر پہ گئے، اپنا سامان لیا اور 9:30 سے پہلے وہاں پہنچ گئے۔ اوم پرکاش بھائی نے ٹکٹ لے کر کے دے دی ہاتھ میں، لو بھیا اس گاڑی میں چلے جانا۔ میں نے کہا ریزرویشن وغیرہ؟ بولا وہ آپ رستے میں کرا لینا۔ خیر بابا بھیج رہے ہیں تو بابا آپ ہی پربند بھی کروا دیتے ہیں۔ یہ بھی پریکٹیکل دیکھا، اس میں جو ٹی ٹی تھا بہت ہی بےچارہ بھلا آدمی تھا، اس کو میں نے اتنا ہی سنایا بھی ہم ایشوری سیوا کے لیے جا رہے ہیں، اگر ہم آرام سے جائیں گے اور جا کے اچھی سیوا کریں گے اس میں آپ کا بھی بھاگے بنے گا۔ تو اس نے کہا آپ بیٹھیے میں پربند کر دیتا ہوں۔ اور 2 رات اس ٹرین میں لگتی تھی کلکتہ پہنچنے ان دنوں میں، لیکن وہ دونوں رات کے لیے اس نے ہمیں ریزرویشن دے دی۔ بڑے آرام سے پہنچ گئے، بہت اچھی ایگزیبیشن وہاں ہوئی اور اس کی ریزلٹ بھی بہت اچھی نکلی تھی۔ دادی جی اور بڑے بھائی بہنیں سب آئے تھے وہاں، تبڑے والا دھرمشالہ میں ہوئی تھی۔ تو کہنے کا بھاو یہ ہے کہ برہما بابا جو جیسا بابا کو آدی دیو کہو یا اس سنسار کا وہ آدی پتا کہو، جیسا ان کو بابا نے پارٹ دیا وہ پریکٹیکل ہمیں دیکھنے کو ملا۔ اور پھر بابا جب اویکت ہوئے، ایکسپیکٹ تو نہیں کرتے تھے ہم، کیونکہ بابا کہا کرتے تھے بچے سبھی بچے بابا کے ساتھ چلیں گے، بابا تو سب کو نینوں پہ بٹھا کے لے چلیں گے۔ اور اچانک سے بامبے میں رات کو 1:30 بجے ہمیں فون پر سماچار ملا۔ سماچار سیدھا نہیں سنایا بہن نے، اتنا ہی کہا کہ بہت ارجنٹ کام ہے، سینٹر پہ آؤ۔ میں رہتا تھا الگ ستھان پر۔ 10 منٹ میں جب وہاں پہنچا تو ہماری شیل اندرا دادی، اس نے کہا ہمارا بابا چلا گیا۔ اس کے بعد اس کے مکھ سے بھی کوئی شبد نہیں نکلا، اور میں بھی کچھ آگے پوچھنے کے لیے میرا بھی کوئی سنکلپ نہیں چلا۔ ایک دم جیسے سن ہو جاتا ہے مائنڈ، ایسا ہو گیا۔ پھر یہ انہوں نے کہا کہ ٹرین صبح کو 6 بجے جاتی ہے، اس میں آپ جانا ہو تو جا سکتے۔ تو ہم اس ٹرین میں یہاں ماؤنٹ آبو پہنچے، رات کو پہنچ گئے تھے، اور 2-3 دن بابا کا ادھر جیسے وہ پارتھیو شریر رکھا تھا، ہر ایک برہمن کے من میں بابا کی طرف دیکھتے، کیونکہ بابا بالکل فریش ایک دم جیسے نیند کر رہے، ہر ایک کو یہی تھا شاید اچانک بابا اٹھ جائے۔ خیر وہ تو نہیں ہوا، لیکن سب کے من میں یہ کوسچن تھا، کیونکہ تب تک ہم تو ہر سیکنڈ جیسے ہر دن بابا کے پتر کا انتظار کرتے، اب کیا کرنا ہے، آگے کیا کرنا ہے، سیوا کیا کرنی ہے۔ اور بابا کے ساتھ جیسے اور دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں اپنے لیے، پریکٹیکل یہ لائف تھی ہماری۔ دادی جی بھی ساتھ میں تھے بامبے میں، تو یہ کوسچن تھا کہ اب کیا ہوگا، بابا چلا گیا، اس کے پہلے مما چلی گئی، اب کیا ہوگا۔ تو بابا کی جب بابا کا انتم سنسکار ہوا اور اس کے بعد بھوگ لگا، گلزار دادی نے بھوگ لگا، تو سب لوگ سندیش کے انتظار میں بیٹھے۔ یہ 21 جنوری 1969 کی بات، اور اس سمے اس کی بجائے کہ گلزار دادی واپس آ کے ہمیں سندیش سنائے، دادی کی آنکھ کھلی دھیرے دھیرے، اور جو اس سمے مدھوبن کے چھوٹے ہال میں سب بیٹھے تھے، سب مکھے بھائی بہنے تھے، تو بابا نے جیسے جیسے درشتی دی سب کو، ہر ایک پہچان گیا کہ باپ دادا سویم پھر سے ہمارے سنمکھ۔ اور اس کے بعد بہت دھیرے دھیرے جیسے فرشتوں کی بھاشا کہو، وسپرنگ وائس، اس میں بابا کی پہلی اویکت وانی بابا نے سنائی، اور اس وانی میں ہم سب کے جو مائنڈ میں پرشن چل رہے تھے ان کا اتر دیا۔ بابا نے کہا कि ये जो आप देख रहे हो ये केवल स्थान का स्थानांतरण हुआ है, एक रूम से दूसरे रूम में चेंज हुए। पहले साकार बाबा को अपने ऊपर समय देना पड़ता था, अब वो समय भी बच्चों के लिए सेवा के लिए। जैसे आप बाबा से डायरेक्शन लेने बाबा के रूम में आते थे, अब बुद्धि योग से वतन में आकर के डायरेक्शन लेना है। तीसरा, जब तक संगम युग है तब तक बाप दादा बच्चों से मिलते रहेंगे। ये नहीं कि अभी बस पूरा हो गया। ये पहली मुरली में, अव्यक्त मुरली में बाबा ने हम बच्चों को हमारे उस क्वेश्चन का आंसर। और जैसे पहले ब्रह्मा तन वो रथ निश्चित था, वैसे ये रथ निश्चित, गुलजार दादी का रथ निश्चित। और इस तरह से बाबा ने जो और क्वेश्चंस थे सबके, और दादी और दीदी साकार में निमित हैं, इनके द्वारा बाबा कार्य कराते रहे। और उसके बाद लगभग कई वर्षों तक, मैं समझता हूं 15-16 वर्ष तक, हर दूसरे तीसरे दिन बाबा की पदरामणी होती रही और बाबा के साथ इसी तरह से लेन देन होती रही। हर कदम पे बाबा से श्रीमत वैसे ही लेते रहे जैसे साकार से लेते, और अभी भी वैसे ही लेते रहे। इसलिए आप मधुबन जाएंगे, शांति स्तंभ देखेंगे, जिन्होंने देखा है वो ठीक है, नहीं देखा तो उसमें देखेंगे कि अभी भी हमें अव्यक्त रूप से बाप दादा गाइड करते, श्रीमत देते रहते। और वो प्रैक्टिकल जो भी ईश्वरी सेवा के, जो भी यज्ञ के कार्य हैं, हर कार्य बाप दादा की श्रीमत से, उसको हम लोग डायरेक्शन लेकर के करते रहते हैं, जिसके कारण प्रैक्टिकल में हम सब देखते हैं कि हर कदम पे बड़े से बड़े कार्य जो भी हैं बाबा के, हर कार्य में क्योंकि बाबा की श्रीमत के अनुसार करते हैं, बाबा की डायरेक्शन लेकर के करते हैं, बाबा की शक्ति उसमें भरी हुई है, तो उसमें हम सफल होते। और बाबा तो कभी कभी ऐसा अनुभव अव्यक्त रूप से ऐसे करवा रहा है जो हम खुद आश्चर्यवत होते हैं कि ये कैसे करवा रहा है। जिस हॉल में आप बैठे हैं, ये डायमंड हॉल, इसकी कहानी को एक सिर्फ इसकी सुन लो तो आपका, आपको लगेगा कि ये कौन करवा रहा है। इसका अभी फाउंडेशन भी नहीं रखा था, और वास्तव में जिस रूप में ये बना है इसका नक्शा भी नहीं बना था। 96 अप्रैल 3 की बात है, बाप दादा का उस सीजन का लास्ट विजिट थी अव्यक्त बाबा की। उस मुरली में बाबा ने लास्ट में कहा, बच्चे अगर ये हॉल तैयार कर देंगे तो 31 दिसंबर को बाप दादा खुद आकर के इसका उद्घाटन करेंगे। अभी उसका फाउंडेशन ही नहीं रखा, ना फाउंडेशन रखा है, नक्शा भी नहीं बना है। उद्घाटन की बात पहले बाबा ने निश्चित कर। तो दादी जी, हम लोग सब, हमारे इंजीनियर सब भाई आपस में मीटिंग किया, और इसकी बजाय कि हम कहें कि ये तो पॉसिबल नहीं है इतना बड़ा हॉल बनाना, नहीं, सब ने कहा, बाबा ने कहा है अगर तैयार हो जाएगा तो बाप दादा उद्घाटन करेंगे। इसका मतलब बाप दादा को हम बच्चों में इतनी फेथ है, इतना निश्चय है, तो हमें भी बाबा की उस बात को रखते हुए ऐसी प्लानिंग करें। काफी उसमें انجینئرس کو، ویلڈرز کو، سب کو محنت ضرور کرنی پڑی، دن رات کرنا پڑا. جہاں ایک ٹیم لگانی تھی وہاں تین تین چار ٹیم لگائی. اس میں ہمارے ایک بھائی کی ایکسیڈنٹ میں جان بھی چلی گئی، لیکن کیونکہ سری بھگوانو واچ تھا، بابا نے خود کہا تھا، اس بات کو کرنے کے لیے دن رات سب نے محنت کی، اور ہر ایک کے دل میں ایک ہی بات تھی، بابا نے کہا ہے تو یہ ضرور ہوگا. اور 31 دسمبر 1996 باپ دادا کی پدرامنی یہاں ہوئی. تب تک یہ ہال ایک دم 100% کمپلیٹ نہیں ہوا تھا، لاسٹ کی بے میں کچھ ٹن شیٹ لگانی باقی رہی، نہیں تو یہ سارا ہال کمپلیٹ جیسے آپ دیکھ رہے ہو تیار ہو کر کے، اور اس ٹائم پر بابا کے سنمکھ میں سمجھتا ہوں 10,000 بھائی بہنیں تھے. اور اتنا سندر بابا نے اس سمے وانی چلائی، سب کو منگ بھرا، اور پریکٹیکل دیکھا کہ اسمبھو بات بھی، کیونکہ یہ ایشوری کاریہ ہے، سوئم بھگوان کرن کراون ہار ہے، اور اس میں فرشتہ سوروپ سے برہما بابا بھی ہم بچوں کو مدد کر رہے ہیں. اس کا پریکٹیکل ثبوت یہ ڈائمنڈ ہال ہے. اوم شانتی.